राम सीता राम 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 सीता राम
केवट नौका लेकर भगवान को पार लगाने की तैयारी में तीनों नौकारूढ़ हैं। गंगा के पवित्र जल पर नौका जाने लगी। जैसे सामने वाला तट आया, केवट ने सोचा कि यदि मैं सामने तट उतार दूंगा तो वैसे मुझसे थोड़े परेशान हुए हैं तो उतरते ही चल पड़ेंगे, चले जाएंगे, और ये सामीप्य बार बार नहीं मिलेगा। और आज सब काबू मेरे हाथ में है, यहाँ कहीं इधर उधर पैर भी नहीं कर पाएंगे, चारों ओर पानी है और तैरना तो आता नहीं। तो केवट ने सोचा कि अब जितना ज्यादा सामीप्य पा सकूं पा लूं। तो भगवान की नौका को वो सामने तट ले जाता है और भगवान उतरने की तैयारी करे उसके पूर्व तुरंत उसको मोड़ देता है और इधर ले आया उस पार। पुनः लखन जी ने कहा, महाराज ये कहाँ ले जा रहा है वापस, उसको कहो हम घूमने नहीं आए। भगवान ने कहा, लखन मुझे लगता है कुछ भूल गया, लगता है कुछ लेने जा रहा है, भूला तो कुछ था नहीं। और पुनः यही तट पर आकर नौका को मोड़ दी और ले गया वहाँ, वहाँ से पुनः मोड़ दी और ले आया यहाँ। तीन चार चक्कर वैसे कटवाई। भगवान ने कहा, केवट अब तुम बहुत परेशान कर रहे, क्यों बार बार ऐसे इधर उधर घुमाता है। बोले, महाराज एक प्रश्न पूछो। बोले, क्या? कैकई माँ ने 14 साल का आपको वनवास दिया, तो उसमें तिथि वार और जगह निश्चित हुई है कि इस तिथि और इस बार को यहाँ पहुंचे? बोले, नहीं, तो बस 8 दिन यहाँ हो जाए तो क्या खतरा है? कहीं आपने समय तो नहीं दिया ना कि इस तारीख को, इस तिथि को, इस बार को यहाँ पहुंचना, एक सप्ताह यहाँ हो जाए। और आपको तो बैठना ही है ना, नौका मेरी चलाना मुझे, और पैसा तो आपको देना नहीं। पुनः सुनाता जा रहा, लखन जी से नहीं रहा गया, ये बात बंद कर। उतराई में तेने पैसे भली नहीं लिए, लेकिन लेने का क्या बाकी रखा? तेरे बाप दादा का कर्मकांड हमसे करवा गया। महाराज एक सप्ताह हो जाए तो तकलीफ क्या है? बोले केवट तू इधर उधर घुमाता है ना, हम नौका में बैठने को आदती नहीं, हम परेशान हो, हम परेशान अकुला चुके। केवट ने बहुत सुंदर ढंग से भगवान को पकड़ कहा, महाराज चार चक्कर मैंने कटवाई इधर से उधर, इतने में आप परेशान हो गए, तो आपसे हम कितने शूरवीर की 84 लक्ष फेरे कि आपने हमको चक्कर कटवाई, लेकिन अभी तक हम परेशान नहीं, अभी तक हारे नहीं, बस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, बस आते रहे जाते। भगवान ने कहा कि तेरे पास मेरा भी बहुत चलने वाला नहीं। तो भगवान ने दूसरी बात कही, परेशान होने की कोई बात नहीं, लेकिन हम या तो रथ में बैठने के आदती हैं या अश्व पर आरूढ़ होने के, नौका में ये हमारा पहला प्रयोग है, तुम इधर उधर मोड़ता है तो हमको डर लगता है कि कहीं गिर जाए। केवट ने कहा आपको गिर जाने का भय लगता है, हाँ तो ऐसा करे मेरा हाथ आप पकड़ ले, कितना अकलमंद है देखिए। और भगवान जिस हाथ पकड़ ले क्या कहना, भगवान ने कहा कि भाई गिर जाने का हमको डर लगता है, तुम हमारा हाथ पकड़ो तो हम गिरे ना। केवट ने कहा महाराज ये नहीं हो सकता, मैं जीव हूं और जीव ईश्वर का हाथ पकड़ता है, लेकिन कब छोड़ दे क्या भरोसा जीव का, पकड़ेगा छोड़ देगा, लेकिन मैंने सुना है आपको पकड़ना ही आता है छोड़ना आता ही नहीं, आप जिसको पकड़ते हो कभी छोड़ते नहीं। आप मेरे हाथ को पकड़ोगे तो आपको आधार मिलेगा और मेरे जीवन की नौका भी अलोल हो जाएगी। और दूसरी बात यह है महाराज कि आज तक हम गरीब और दीनहीन लोगों का हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, आप हमारे हाथ को पकड़ लो तो बाद में दुनिया में सब हमारे हाथ को पकड़ेंगे, आप यदि एक बार आदर दे दो तो सब आदर देंगे। केवट के हाथ को भगवान ने पकड़ लिया है, और कितना खुश नसीब, देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की, बड़ भागी है केवट तेरे जैसा भाग्यवान को। बस अब नौका सामने तट पहुंच चुकी, क्योंकि भगवान जब हाथ पकड़ लेना तब किनारा ही आ जाता है, बाद में घूमना फिरना बंद, तट आ गया। और भगवान राम लखन वैदेही तीनों गंगा की बालू में रेत में आकर खड़े रहे, और केवट ने नौका की रस्सी बांध ली, और जब भगवान खड़े हैं गुह सब, तो केवट ने उतर कर अब दंडवत किया। पहले न वंदन किया न हाथ जोड़ा, कहीं वर्णन नहीं मिला, लेकिन अब भगवान को पार लगाने के बाद उसने दंडवत कर दिया। क्यों? कि ये आदमी दंडवत के अर्थ को भलीभांति पहचानता है, भलीभांति जानता है, भलीभांति पहचानता था दंडवत के अर्थ को, क्योंकि दंडवत का अर्थ होता है किसी के चरणों में यदि हम दंडवत कर दें तो पूर्ण अधीनता, बाद में सामने वाली व्यक्ति जो कहे सो करना पड़ेगा। केवट ने सोचा होगा कि पहले यदि मैं दंडवत करूं तो भगवान जो करे सो मुझे करना पड़ेगा, पहले तो मैं चाहूं वो कर लूं, भगवान से करवा लूं, बाद में दंडवत कर लूं। तो अब सब कुछ करवा लिया अपनी इच्छा के अनुकूल, अब उसने दंडवत किया परमात्मा के चरणों। गोस्वामी जी लिखते हैं, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एही नहीं कछु दीना, प्रभु ही पियही यकी सिए जान निहारी, मनी मुदरी मन मुदित उतारे, पियही यकी सिए जान निहारी, अमनी मुदरी मन मुदित उतारे। केवट ने दंडवत कर लिया, भगवान को संकोच हुआ कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया। सामान्य आदमी उसकी नौका में बैठकर विहार करता होगा तो कुछ न कुछ तो देता होगा, भगवान के पास कुछ नहीं क्या दे। लेकिन सीता जी भगवान के मनोभाव को पकड़ लेती है, भगवान बोले नहीं लेकिन पकड़ लिया मनोभाव, उसी का नाम पत्नी। पति बोले ना और पति के मनोभाव को पकड़ ले, इतनी एकता पति पत्नी में होनी चाहिए, जरा भी बोले नहीं सरकार, और सीता जी पकड़ गई, तुरंत मणिमुद्रिका निकाल देती, इतनी एकता रही भूतकाल में पति पत्नी, मन की इच्छा, मन में क्या चल रहा है वो पत्नी पकड़ ले। आजकल एकता रही लेकिन दूसरे अर्थों में। हमारे सौराष्ट्र में एक बात लोग कहते हैं कि एक पुरुष ने अपनी पत्नी को कहा कि आजकल चोर लोग बहुत आते हैं, हम घर में एक कुत्ता पाले। तो पत्नी ने कहा क्या जरूरत है, आप है ना। यही की सिय जान निहारी, मनी मुदरी मन मुदित उतारी। मुद्रिका निकाली और भगवान के हाथ में दी है। केवट ने देखा और भगवान राम नाम अंकित मुद्रिका केवट को देने लगे। का है वो कृपाल, का है वो कृपाल, ले केवट चरण गहे अकुलाई। केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान ने कहा लो केवट ये उतराए, तो केवट अकुला गया और चरण पकड़ लेता। एक तो केवट ने कहा महाराज मैं उतराई नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने आपके पिता की कसम खाई थी, हमारे कपड़े फटे हैं लेकिन संस्कार नहीं फटे। एक वचनी रामभद्र का दास बनने के बाद यदि हम वचन तोड़ दें तो आपकी भक्ति बदनाम हो जाएगी। दूसरी बात, केवट ने भगवान को कहा कि मैं मुद्रिका नहीं लूंगा महाराज, क्योंकि मुद्रिका राम नाम अंकित है, आप मुझे राम मंत्र की दीक्षा दिए जा रहे हैं। महाराज मुझे इतना कहां समय कि मैं राम नाम की माला जपूं, आप ऐसा करें मैं आप यहां से जाए, बाद में आप मेरे नाम की माला फिराए। लखन जी ने कहा अब हद हो रही, तेरे नाम की माला हम फिर। बोले हाँ एक ही बात है, या तो हम आपके नाम ले आप हमारा नाम ले, क्या फर्क। कहा नहीं ये ले लो। केवट ने चरण क्यों पकड़ लिया, बहुत अच्छा बात बताई माँ, क्योंकि मुद्रिका जो थी ना वो सुवर्ण की थी, सुवर्ण माया का प्रतीक है, माया जाल मानी जाती है। तो भगवान को केवट ने कहा कि महाराज आप मुझ पर जाल छोड़ना चाहते हैं मछली पकड़ने के लिए इस सुवर्ण की मुद्रिका से, लेकिन आपको आता नहीं, चरणों से जो दूर होती है मछली वही जाल में आती है, चरणों में जो होती है वो मछली कभी जाल में नहीं आती, इसलिए मैंने आपके चरण पकड़ लिए, कितना ही आपको बताएं मैं आपकी जाल में फंसने वाला नहीं। भगवान ने कहा कुछ तो लेना चाहिए। तब केवट ने कहा महाराज आज मुझे क्या नहीं मिला, अब कछु नाथन चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, आपका अनुग्रह ही बस। भगवान ने कहा कुछ तो लेना चाहिए, केवट हमारी मानो। तब केवट ने कहा महाराज 14 साल के बाद जब वापस लौटोगे तब जो देना उसको प्रसाद में ले लूंगा, अभी कुछ पक्का कर लिया कि 14 साल के बाद यहां से ही निकलना। भगवान बन चुके हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं वैसे तो भगवान गए नहीं, कुछ तो दिया, क्या दिया, बहुत प्रेम से भक्ति का निर्मल वरदान दे दिया। और केवट को कहा कि अब हम जाएं, केवट भगवान के चरणों में गिर पर रोने लगा कि महाराज आप मुझे विदा दे रहे हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ। आइए विनय की ये पंक्तियाँ सुने और गाए। जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, कहाँ तजी चरण तुम्हारे, का को नाम पतित पावन जग, चरण तुम्हारे जाऊं कहां। छोड़कर अब कहाँ जाऊँ प्रभु, भगवान ने विदा दी। और केवट के लिए मैंने ऐसा सुना है कि भगवान को पार उतारने के बाद ये आदमी नौका लेकर पुनः सामने तट नहीं गया, वहीं ही रुक गया। उसने सोचा कि एक बार भगवान को लेकर आया, अब खाली नौका लेकर कौन मुंह लेकर जाऊं, नहीं गया। अब ये नौका में मैं किसी को बैठने नहीं दूंगा, एक प्रसादी की नौका हो, नित्य नौका को फूल चढ़ाए, गंगा जल से स्नान करवाए, परिक्रमा करे और प्रभु भजन करने लगा 14 साल की प्रतीक्षा। मैंने तो ये भी सुना कि केवट ने भगवान के जाने के बाद अपनी आंख पर पट्टी बांध ली। किसी ने पूछा भाई, बोले हाँ अब भगवान आएंगे तभी पट्टी खोलूंगा, क्योंकि प्रभु के दर्शन के बाद अब कुछ देखना नहीं। तो केवट वहाँ बैठ गया और भगवान की प्रतीक्षा में डूबा है। यहाँ परमात्मा शिव पूजा करते हैं और सीता जी गंगा की स्तुति करती हैं और यहाँ से भगवान की यात्रा आगे होने वाली है। और केवट यहाँ मानो नौका को अपना इष्ट समझकर भगवान की प्रतीक्षा में बैठ जाता है। आगे की कथा कल सुबह 8:30 बजे संक्षेप में आगे बढ़ेंगे। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान श्री बाल कृष्ण सदगुरु। नमः पार्वती पते हरं। गंगा के सामने तट से अब भगवान वन यात्रा आगे कर रहे हैं। श्रृंगवेदपुर तक रथ था, गंगा में नौका थी। अब यहाँ से पैदल जाना है। भगवान को रास्ता दिखाने के लिए और भगवान को जहाँ रहना है वहाँ सब सुविधा कर देने के लिए गुह साथ चला। भगवान ने गुह को कहा कि हमको तो 14 साल रहना है, तुम वापस जाओ। कहे नहीं महाराज, मेरे दिल को जब संतोष हो कि मेरे परमात्मा की सब व्यवस्था हो गई, बाद में आप जो आज्ञा करेंगे मैं मानूंगा। गुह साथ चला। पदयात्रा है राम और लखन के लिए, तो पदयात्रा प्रथम हो चुकी थी विश्वामित्र जी के संग में, लेकिन वैदेही के लिए एक प्रथम प्रयोग था। जरा भी पता न लगे ऐसे वैदेही भगवान के पीछे पीछे चलती है। प्रयागराज पहुंचते, त्रिवेणी संगम में स्नान, अक्षय की परिक्रमा, माधव की पूजा की और भगवान भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। भरद्वाज जी ने परमात्मा का दिव्य स्वागत किया। भगवान और भरद्वाज जी आमने सामने नमन कर रहे हैं और वाणी से अगोचर सुख का अनुभव कर रहे हैं। भगवान ने मुनिराज भरद्वाज जी को पूछा कि आप कुशल हैं? भरद्वाज जी ने कहा, मन वचन और कर्म से जब लग ये जीव कपट छोड़कर आपका नहीं होता, आपका भजन नहीं करता, तब तक जीव को कुशलता मिलती रही। आज हमारा प्रयाग धन्य हो गया। भगवान ने एक रात्रि मुकाम प्रयाग में किया। दूसरे दिन भगवान अपना नित्य कार्य संपन्न करके भरद्वाज जी से पूछते हैं कि आप हमें रास्ता बताइए, हम किस रास्ते जाएं। रामचरितमानस में भगवान 3 ऋषियों को 3 बातें पूछते हैं। भरद्वाज जी को रास्ता पूछा, आगे जाकर वाल्मीकि जी को रहने की जगह पूछेंगे कि स्थान कहाँ, और अरण्यकांड में अगस्त जी को राक्षस को मारने का मंत्र पूछेंगे। तीनों ऋषियों को 3 प्रश्न पूछे गए और किसी को रास्ता नहीं पूछा। भरद्वाज जी को ही क्यों पूछा? एक तो भरद्वाज जी के परिचय में ऐसा आया बालकांड में, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी परमारथ के मार्ग के निष्णात थे। संसार में रास्ता उसी को पूछो जो परमार्थी हो। स्वार्थी को रास्ता पूछने में गुमराह हो जाओगे। तो भरद्वाज जी परमार्थी थे और संत परमार्थी नहीं थे क्या? क्यों दूसरों को नहीं पूछा? दूसरी बात, भरद्वाज जी परमार्थी रहे, वैसे हर संत परमार्थी ही होते हैं, लेकिन भरद्वाज जी में एक विशेषता थी कि और साधु लोग एक एक नदी के तट पर बैठे थे, भरद्वाज जी 3 नदी के तट पर बैठे। रास्ता उसी को पूछो जो तीन नदी के तट पर बैठा है, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा यानी भक्ति, यमुना यानी कर्म और सरस्वती यानी ब्रह्म विद्या। जिस महापुरुष में ज्ञान भी हो, भाव भी हो और जल कमल जैसा कर्म भी हो, ये तीनों का जिसमें समन्वय हो, ऐसे संत को मार्ग पूछना ताकि सही मार्ग मिले। एक एक तट पर जो बैठ केवल ज्ञान में जिसकी रुचि है ना, उसको आप भक्ति की बात करोगे तो वो काटेगा कि ये ताली लगाना, ये कथा, ये कीर्तन, ये सब क्या है, ये करने से क्या फायदा, शायद ऐसा कहे। केवल भक्ति में जो मानता है वो ज्ञान की आलोचना करेगा कि केवल ज्ञान से क्या फायदा। कर्म को मानने वाला शायद दोनों की आलोचना करेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जिसमें हिमालय की ऊंचाई जैसा ज्ञान हो और सागर की गहराई जितना भाव हो, भक्ति हो और कर्म हो, तीनों का संगम जहां है, ऐसे संत को रास्ता पूछिए, वरना वो अपनी रुचि के अनुसार आपको बताएगा, अपना जो सिद्धांत होगा। तो ऐसे संत को पूछिए। आज हुआ ये कि लोगों ने बहुत रास्ते बताकर अपना अपना आग्रह रखा, ये करो, किसी ने कहा बस यही सच है, दूसरे ने कहा यही, नहीं नहीं, सबकी अनुभूति सबकी है, जिस मार्ग से जिसको मिला सो अपने मार्ग की बात करेगा। आज हुआ ऐसा कि इतने पंथ फूट पड़े संसार में कि लोग गुमराह हो चुके। इसलिए समन्वय करने वाले संत को पूछिएगा कि रास्ता का, आज कितने रास्ते फूट पड़े हैं, किसी ने ये बताया, किसी ने ये किया, किसी ने ये किया, लोग विक्षिप्त हो चुके हैं। मैं अक्सर कहता हूं, एक खेत में बड़ा मकान था, तो बड़ा मकान था वो, उसमें क्या है भाई, हमारी चर्चा चल रही है, एक बड़ा खेत था, उसमें एक बड़ा मकान था, तो बिल्कुल खाली था, उसमें बिल्कुल द्वार पर लिखा था कि भीतर जाइए। तो एक आदमी भीतर गया, और जैसे वो भीतर गया तो वहाँ दूसरा बोर्ड, साइन बोर्ड लिखा था कि अब दाएं वाले कमरे में जाइए। तो वो बेचारा दाएं वाले कमरे में गया, वहाँ गया तो लिखा था कि अब बगल वाले कमरे में जाइए, तो वो बगल वाले कमरे में गया, वहाँ गया तो लिखा कि अब मध्यस्थ खंड में जाइए, तो मध्यस्थ खंड में गया, वहाँ गया तो लिखा था कि अब ऊपर जाइए, सीढ़ी लगी हुई थी वो ऊपर गया, ऊपर गया तो लिखा था कि बाएं वाले कमरे में जाइए, तो वो बाएं वाले कमरे में गया, वहाँ गया तो लिखा था कि अब उसके बगल वाले कमरे में जाइए, तो वो वहाँ गया, वहाँ गया तो लिखा कि अब ऊपर वाला जो मध्यस्थ खंड है वहाँ जाइए, वहाँ गया, वहाँ गया तो लिखा पाया कि अब नीचे जाइए, सीढ़ी लगी थी वो नीचे उतरा, नीचे उतरा तो लिखा था कि अब द्वार पर जाइए, तो वो द्वार पर गया, वहां बड़े अक्षरों में लिखा था इधर उधर भटकता क्यों है, बाहर जाइए। यही दशा लोगों की कर दी पंथ वालों ने। अब संसार को, अब भारत को जरूर है ऐसे कोई समन्वित संत की, ऐसे कोई संगम के तट पर बैठे हुए संत की, जो राष्ट्र को, जन जन को सही पथ दर्शन करे। हमारा ये उसी का ये तोड़ डाला भारतीय मानव को धर्म के नाम पर, और जब अर्थ के नाम पर समाज टूटता है तो कहीं से उधार राशि लेकर भी जुड़ा जाता है, काम के नाम पर समाज टूटता है तो कोई चिंता भी नहीं, लेकिन जब भी समाज धर्म के नाम टूटता है तब उसको जोड़ने के लिए बहुत कई परमहंसों को अवतरित होना, तभी तो काम होता है। ये करो तोड़ डाला लोगों को, विक्षिप्त कर दिया। भरद्वाज जी को जब रास्ता पूछा तो उसने अपना रास्ता नहीं बताया, उसने अपने शिष्यों को बुलाए, 50 शिष्य दौड़ाए और उसमें से 4 शिष्य की चुनाव की कि ये शिष्य जो रास्ता बताए उस पर जाए। 4 शिष्य क्या है, 4 वेद है। ऋषि जब रास्ता बताएगा, सही संत जब रास्ता बताएगा, तो हमारा जो वैदिक रास्ता है, मूल हमारी परंपरा वही, वो नया पंथ नहीं। ध्यान देना, नया पंथ संसार में पैदा करना आसान है, लेकिन संत सत्य के पंथ पर चल के दिखाना कठिन है। आज लोग बहुत नए नए पंथ निकालते रहते हैं, सभी संप्रदाय में, सभी धर्म में कितने बंटवारे होते जा रहे हैं, और इस देश में भीड़ एकत्रित करना तो बहुत कठिन नहीं, तुम थोड़ा नया शुरू करो तो 50 तो तुमको मिल ही जाएंगे, प्रचार करो तो और 50 मिल जाएगा, और वैसे आपका ग्रुप जमेगा और एक 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 बिलग चौका लग जाएगा, और ऐसे हिंदुस्तान टूटता जा रहा। वैदिक परंपरा जो है, सनातन संस्कृति जो है, भारतीय अस्मिता की जो दंड धारा बह रही है, ये संप्रदाय जो है वो क्या है? वो तो स्नान करने के घाट है, धर्म तो गंगा है। बिलक बिलक पंथ है वो तो घाट है कि यहां बैठकर स्नान करो, किसी ने यहां व्यवस्था की कि नहीं भाई यहां से घाट स्नान करो, किसी ने यहां व्यवस्था की, लेकिन स्नान करना पड़ेगा तुम्हें गंगा में, गोता लगाना पड़ेगा तुम्हें धर्म में। व्यवस्था हो सकती है किसी ने ये की किसी ने ये की, लेकिन तुम घाट को धर्म मत समझना। धर्म है बहता गंगा का पानी, नहर खोदने के बाद उसकी व्यवस्था करनी होती है कि यहां ली जाए। गंगा के लिए कोई प्रचार की जरूरत नहीं, वो चट्टानों को तोड़ती अपने आप चली जाती है, क्योंकि धर्म में ऐसा भाव रहता है, वो हर समस्या का हल करता बहता। तो वैदिक रास्ता जो है, मूल रास्ता हमारा है, उस पर संत जाने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। तो चार शिष्य चार वेद के प्रतीक हैं, भगवान उसके पीछे चलते हैं। यमुना के तट पर पहुंचे, यमुना का जल शाम है, यहाँ से चार शिष्यों को भगवान विदा देते हैं, क्योंकि यहाँ एक तपस्वी का आगमन हुआ जिसके बारे में कई अर्थ निकाले गए कि यह तपस्वी कौन था क्या था। किसी ने कहा ब्रह्मा थे, किसी ने कहा अग्नि थे, किसी ने कहा गोस्वामी जी स्वयं थे। देखने वाले लोगों ने कहा कि ये प्रेम स्वयं परमात्मा को मिलने के लिए आया था। कोई भी हो, यमुना के तट से भगवान ने चार शिष्यों को विदा कर दी और गुहराज को भी विदा कर दिया। यहाँ से तीनों अकेले आगे बढ़े, आगे राम, पीछे लखन, बीच में सीता जी चली जा रहे। लोग धन्य धन्य होने लगे, गाँव गाँव आनंद विभोर बनने लगा, और वैसे दिव्य राज्य का शासन चलाते भगवान प्रेम राज्य की स्थापना करते करते आगे बढ़ रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में प्रभु पधारे। वाल्मीकि जी इतने हर्षित हो गए कि क्या बताएं। वाल्मीकि जी ने स्वागत किया। वाल्मीकि के मन के आनंद का वर्णन करते हुए बाबा जी ने लिखा,
वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, तब कर कमल तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई, बोले वचन श्रवण सुखदाई, बोले वचन श्रवण सुखदाई।
सब गाइए,
तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथ, तुम त्रिकाल बदर जी तुम रे हाथा, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेही जेही भांति दीन बनरानी, वाल्मीकि मन आनंद भारी। वाल्मीकि मन आनंद भारी
भगवान पधारे तो वाल्मीकि जी के आनंद की कोई सीमा न रही। भगवान ने हाथ जोड़कर बहुत सुंदर शब्द में कहा कि बाबा आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं, फिर भी मैं बता दूं कि मुझे वन में क्यों आना हुआ। भगवान ने कारण बहुत सुंदर बताया क्यों आए। भगवान कहते मैं इसलिए आया हूं,
तात बचन पुनिमा तुहित भाई भरत यसरा मो कहु दर्श तुमार प्रभु सब मम पुण्य प्रभा।
मेरे पिता के वचन के लिए, माता के हित के लिए, मेरे भाई भरत को शासन मिले इसलिए, और मुझे आप जैसे संतों के दर्शन हो जाएं इसलिए मैं वन में आया। मेरे सब पुण्य के प्रभाव है। वाल्मीकि जी को आनंद हुआ और अब भगवान वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि आप मुझे ऐसी जगह बताएं जहां मुझसे कोई मुनि को उद्वेग न हो, मेरा जाना किसी को अरुचिकर न हो, ऐसा स्थान मुझे बताइए जहां हम कुटिया बनाकर कुछ समय निवास कर, ऐसी जगह बताए। वाल्मीकि जी को भगवान ने स्थान पूछा। वाल्मीकि के आश्रम में गाय और सिंह एक साथ रहते थे, सांप मयूरों के पैरों में घूमता था और चूहा सांप के सर पर से कूदता था, फिर भी सांप उसको कुछ करता नहीं। जिस आश्रम की तपस्थली में हिंसक ने अपना स्वभावगत वैर छोड़कर अहिंसा पैदा की, भगवान को लगा ऐसे महापुरुष को ही साधना का स्थान पूछना चाहिए, ऐसे संत को ही तपस्थली। अहिंसा इतनी बढ़ गई जैसे पतंजलि का सूत्र सत्य हो गया, तत्सन्निधो वैर त्याग, जैसे समीप आने वाला सब वैर से मुक्त होने लगा, ऐसे महापुरुष के आश्रम में पूछा है बाबा आप जगह बताइए। वाल्मीकि जी हंस पड़े कि महाराज आप मुझे पूछ रहे हैं रहने की जगह बताइए, लेकिन पहले आप खाली जगह बताइए कि आप कहाँ नहीं है।
जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर।
एक शराबी मस्जिद में शराब पी रहा था तो मौलवी ने आकर कहा अरे ये पाक जगह पर तुम नापाक काम कर रहे हो, बाहर शराब पीवो, यहाँ पीना मना है। बोले यहाँ क्यों नहीं पिए, कहे यहाँ खुदा का निवास। तो शराबी ने शेर कह दिया
जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर वरना ऐसी जगह बता दे जहां खुदा न हो।
खुदा के बिना कोई जगह है तो वहां जाकर पी लूं।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समा,
परमात्मा हर जगह पर समान रूप से व्याप्त है। वाल्मीकि जी ने कहा आप मेरी कसौटी कर रहे हैं कि मैं आपको जगह बताऊं, लेकिन क्षमा करे प्रभु मैं आपको जानता हूं आप कौन हो। इतना कहकर वाल्मीकि बहुत सुंदर शब्द
श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की श्रुति जो सृजति जग पालती हरती रुख पाई कृपा निधान
आप श्रुति सेतु के पालक हैं प्रभु और जानकी जी आपकी आद्य शक्ति हैं जो आपकी रुख को देखकर संसार को उत्पन्न पालन और लय करती है और ये लखन जी शेष के अवतार हैं। आप तीनों मानव तन लेकर देवताओं के कार्य के लिए आए हैं मैं आपको जानता हूं। और वाल्मीकि जी बहुत सुंदर बोले कि आप क्या हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। बहुत सुंदर वेदांत रखा है। राम जी आपका स्वरूप वाणी से पर है। मैं विस्तार नहीं कर पाऊंगा लेकिन संक्षेप में जरूर कहता चला कि ईश्वर का रूप वाणी से पर है। किसी को बहुत बोलना आ जाए तो जरा भी गलती नहीं करनी चाहिए कि बोलने से परमात्मा मिल जाए। बोलने से परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। यदि बोलने से शब्दों के माध्यम से परमात्मा मिल जाते तो वेद नेति नहीं कहते। समाज संतों का मौन समझ नहीं सका, इसलिए संतों को बोलना पड़ा। बाकी बोलने से परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा तो मिलता है मौन से। शब्द का विषय परमात्मा थोड़े है, शब्द माध्यम बन सकता है। आप दिल्ली से कलकत्ता आए बाय रोड, तो माइलस्टोन लगा हुआ है, उस पर लिखा है कि 200 किलोमीटर कलकत्ता। बीच में आप पड़े और आप गाड़ी से उतरकर माइलस्टोन को पकड़ ले कि कलकत्ता आ गया, तो तुम बड़े धोखे में हो, अभी ज्यादा यात्रा करना है। एक माइलस्टोन आएगा 50 किलोमीटर, वहां भी कलकत्ता नहीं, अभी आगे जाना है। आएगा 10 किलोमीटर, वहीं भी नहीं, उससे भी आगे जाना 5 किलोमीटर, वहीं भी कलकत्ता नहीं। जिस माइलस्टोन पर लिखा होगा शून्य, वहां कलकत्ता होगा। वैसे बोलते 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 संत जब शून्य हो जाते हैं, शब्द समाप्त हो जाते हैं, तभी तो परमात्मा पाया जाता है। शब्द का विषय नहीं परमात्मा, जरा भी गलती में मत रहिए। अच्छा बोल ले ठीक है, देन होती है परमात्मा की। बाकी केवल शब्द और वक्तव्य से परमात्मा मिलता तो कभी पा लेते। जो जान चुके हैं वो तो बोलना बंद कर देते हैं, ज्यादा बोलते ही नहीं, बोल बोल वही करते हैं जो अभी जान नहीं पाए। बहन लोग ज्यादा समझ पाएंगे क्योंकि रसोई करती है ना, उसको ज्यादा पता है। खिचड़ी जब तक पकती नहीं तब तक बोल बोल करती है। चूल्हे पर आप खिचड़ी करते हो ना, खिचड़ी तो सभी जगह बनती होगी ना, चावल और मूंग की। तो जब तक चूल्हे पर है खिचड़ी की पकी नहीं तब तक वो बोलती रहेगी, पक जाएगी तो बोलना बंद। तो जिसके जीवन की खिचड़ी पक गई उसको बोलना नहीं, जिसकी पकी नहीं। हम 6-6 घंटे बोलते हैं इसलिए अभी पकी नहीं, वरना क्यों बोला। 6-6 घंटे चिल्लाते रहते हैं क्योंकि खिचड़ी अभी पकी नहीं। लेकिन आप यह मत भूल करना कि आप बोलते नहीं तो आपकी पकी गई, ऐसी भूल आप मत करना। शायद आप सोचे कि हम 6-6 घंटे मौन बैठे हैं तो हमारी पकी गई, पक गई नहीं, आपकी तो अभी चूल्हे पर भी नहीं गई। चूल्हे पर चढ़ोगे तभी तो कुछ होगा ना। जिसको मिल गया वो बोलेगा नहीं, मन मगन भयो, अब क्या बोले। गूंगे को सपनों भयो, मन ही मन मुस्काए। गूंगे आदमी को सपना लग गया वो बेचारा क्या कहेगा। कबीर ने कहा गूंगे केरी शर्करा खाई और मुस्काई। गूंगे आदमी ने साकर खा ली और अकेला हंसता रहा। तो ईश्वर का रूप वचन से पर और बुद्धि से पर, परमात्मा बुद्धि से भी पकड़ में नहीं आता, बुद्धि से भी पर है। कितने ही तुम्हारी बुद्धि तेजस्वी क्यों ना हो, संसार तक तुम्हारी बुद्धि ठीक है, लेकिन परमात्मा के प्रदेश में बुद्धि काम नहीं करती। वहां श्रद्धा काम करती है, वहां प्रीत काम करती है, बुद्धि का विषय नहीं परमात्मा। दो लड़के समुद्र के तट पर घूम रहे थे तो एक फकीर निकला। एक लड़के ने शरारत करके दूसरे लड़के की एक जो शर्ट था उसका उफाड़ दिया, कुर्ता फाड़ दिया। तो वो रोने लगा, गरीब था वो, फाड़ कर चला गया दूसरा लड़का। फकीर को दया आ गई, बच्चे के हाथ को पकड़कर कहा बेटा क्यों रो रहा है। बोले बाबा मैं गरीब हूं, मेरी माँ मुझे मारेगी डांटेगी, इस बालक ने मेरा कुर्ता फाड़ दिया। संत को दया आ गई, कहे बेटा मैं सिद्ध हूं, मैंने आज तक मेरी सिद्धि किसी को दिखाई नहीं, लेकिन तुम रोना बंद कर दो, तुम जो चाहो सो मैं तुम्हें दे दूं, रोना बंद करो। तो वो रोना बंद कर देता है और कहा कि मैं जो मांगू आप देंगे। बोले हाँ। तो एक बालक ने अपनी जेब से एक प्याला निकाला छोटा सा और फकीर को कहा कि ये क्या है। बोले प्याला, और सामने क्या है। बोले समुद्र दरिया। तो मैं जो मांगू सो आप दोगे। बोले हाँ, तो ये प्याले में दरिया भर दो। फकीर बड़ा हैरान हो गया, बालक के पैरों में गिरकर कहा कि मुझे कुरान नहीं सिखा पाया वो आज तूने सिखा दिया, क्योंकि आज तक मैं समझता था, आज मुझे पक्का हुआ कि जैसे प्याले में दरिया नहीं भरा जाता वैसे खोपड़ी में कभी ब्रह्म नहीं भरा जाता। केवल बुद्धि के प्याले में ब्रह्म नहीं आ सकता, क्योंकि उपनिषदों का सूत्र है ब्रह्म अखंड है, बुद्धि खंडित है, खंडित अखंड को कभी रख नहीं सकता। व्यवहार में बुद्धि की जरूरत है, परमात्मा के प्रदेश में तो पागलों की जरूरत है, वहां बुद्धिमान नहीं जा सकता। रामायण में लिखा है इसलिए बोल रहा हूं, ये मेरी जेब की बातें नहीं है, जो रामायण में लिखा। आइए मैं प्रमाण हूं। मन क्रम बचन
छांडी चतुराई मन क्रम बचन भजत कृपा करी है रघुराई भजत कृपा करी है रघुराई।
चतुराई से वो नहीं मिलता, वो बुद्धि का विषय नहीं। परमात्मा या संत दत्त दीक्षित बुद्धि हो तो जरूर मार्गदर्शक बन सकती हैं, लेकिन अंत में परमात्मा बुद्धि की सीमा के बाहर, बुद्धि पर अविगत, ईश्वर की विगत नहीं दी जाती, वो अविगत है, अकथ अकथनीय है, उसकी कथनी नहीं हो सकती, अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं। वेद जिसको नेति नेति कहते हैं, राम जी आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप ब्रह्मादि देवताओं को नाच नचाते हैं, आपको तो वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहे। जैसे जैसा वाजिंत्र बजे ऐसा नृत्य करना चाहिए, तो आप मनुष्य का रूप लेकर आए हैं ना, तो मनुष्य की तरह मुझे पूछ रहे हैं कि हम कहाँ रहे, लेकिन मैं जानता हूँ आप ब्रह्म हैं, और फिर भी आपने पूछा है, तो चलो मैं कुछ स्थान आपको आध्यात्मिक दिखा दूँ कि आप यहाँ निवास करें। भगवान कहाँ निवास करें वो स्थान दिखाया है, संक्षेप में सुन लीजिए, बाबा जी लिख दे।
जिनके श्रवण सम जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना भरही निरंतर हो भी न पूरे तिन के ही तुम कहो गृह रूरे जिनके श्रवण समुद्र समाना।
ऐसे परमात्मा सबके हृदय में है, लेकिन हमको अनुभव नहीं होता। अनुभव हो ऐसे भगवान हमारे हृदय में बैठे तो कैसा जीवन होना चाहिए। पहली बात, जिसके कान समुद्र की तरह, कान से शुरुआत की है, ये शरीर क्षेत्र है और ये सब जगह बताई है कि ऐसा हो तो भगवान हृदय में बैठे। जिसके कान समुद्र की तरह हो, समुद्र में कई नदियां पानी ले जाती हैं लेकिन समुद्र तृप्त नहीं होता और नदियों के पानी से उसको कभी अरुचि नहीं होती, वैसे कान रूपी समुद्र में तुम्हारी कथा रूपी नदियां आती ही रहें लेकिन कथा सुनते सुनते कभी तृप्ति न हो, तो समझना उसके हृदय में भगवान निवास करें। बस कथा सुनते सुनते और रुचि बढ़े, नया नया सुनने का चाह दिल में उठे कि अभी सुने अभी सुने। और नदी जैसे दरिये में मिल जाती है तब अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, वैसे कथा कान के दरिये में जाकर रोम रोम में उतर जाए, दूसरे कान से निकल न जाए। वरना होता है ऐसा, मन कथा में लोग बैठते हैं लेकिन लोग में कथा नहीं बैठती, ऐसा हो जाता। तो जैसे नदी अपना अस्तित्व समाप्त करती है वैसे कथा रोम रोम में उतर जाए इंसान के। ऐसा जिसका कान हो उसके हृदय में आप निवास करें। जिन्होंने नेत्र को चातक बना दिया और परमात्मा के रूप बिंदु के बिना उसको संतोष नहीं, ऐसा जिसका दर्शन हो उसके हृदय में आप निवास करो। जिसकी जीभ हंसनी बनकर आपके नाम का और गुणगान का मोती का चारा चुना करे उसके हृदय में आप निवास करो। जिसकी नासिका आपकी प्रसाद की सुगंध लिया करे उसके हृदय में आप निवास करो। जो आपको अर्पण करके खाना खाए, आपको नई वस्तु घर में कोई भी आए तो आपको देकर ही प्रसाद के रूप में ले उसके हृदय में आप निवास करें। मस्तक गुरु संत के चरणों में झुका दे उसके हृदय में आप निवास करो। और आगे चलते बाबा जी ने लिख दिया,
कर नित करहिं राम पद पूजा कर नित करहिं राम पद पूजा राम भरोसे हृदय नहीं दूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चल जागी, चरण राम तीरथ चल जागी, राम बसरू तीन के मन माही। राम बसरू तीन के मन माही, कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा।
जिसके हाथ आपके चरणों की सेवा करें, भगवान की मूर्ति हो उसके चरण की सेवा तो करनी ही चाहिए, लेकिन वहां से बात खत्म नहीं होती। भगवान के विराट रूप में उसके चरण है, दीनहीन तिरस्कृत लोग, गरीब लोग, पीड़ित लोग, रुग्ण लोग। रमण महर्षि कहते थे, अभागा बानो मेरा ईश्वर है। तो परमात्मा के ये सब चरण है, दीनहीन समाज उसकी सेवा जो करता है, सही अर्थ में चरणों की सेवा ये, उसके हृदय में आप निवास करो। जिसका पैर तीर्थों की यात्रा करे, यानी पवित्र लक्ष्य की ओर गति करे, उसके हृदय में आप निवास करो। जो आपके मंत्र राज का नित्य जप किया करे, बाबा जी लिखते हैं, मंत्र राज नित्य जप गी तुम्हारा, मंत्र राज नित जप गी तुम्हारा, पूज ही तुम ही सहित परिवारा, तर्पण होम करगी विधि नाना, विप्रजवाई देही बहुदाना, जो तुम्हारे मंत्र राज का नित्य जप करे और परिवार के साथ आपकी पूजा करे, दो अर्थ होते हैं। एक तो वो अपने परिवार के साथ आपकी पूजा करे, या तो ये पूरा जगत आपका परिवार है ऐसा मानकर पूरे जगत की सेवा करे। उसके हृदय में आप घर में दो काम करना मेरे भाई बहन। कल पूर्णाहुति तक हम पहुंचने जा रहे हैं, पूर्णाहुति की ओर सत्संग विराम लेगा कल शाम। दो बात, जितने मूल्यवान सूत्र हैं उसको हृदयस्थ करिएगा, चंद सूत्र में कहता चला हूं। दो बात करना हो सके तो, अपने घर में भजन साथ में करना और भोजन साथ में करना। बिलक बिलक भोजन मत करें, घर के सभी सदस्य मिलकर भोजन करें तो एकता बनी रहेगी, और भजन भी साथ में करें। अपनी व्यक्तिगत साधना जरूर करें सुबह उठकर जो आप करते, लेकिन एक समय अपने परिवार में ऐसा रखो कि छोटे छोटे पोते पोतियां बेटे बच्चे बहुएं सब मिलकर स्वाध्याय करें, भजन करें, प्रार्थना करें। अरे जो मेरा कोई आग्रह नहीं, आप ये करो, कुछ करो। जिसके घर में, जिस भारतीयों के घर में भजन और भोजन संयुक्त रूप से होगा, उसके घर में देवताओं का ज्यादा वास होगा, उसके घर में ऋषियों की चेतना घूमती रहेगी, और आपको एक न एक दिन पता लगेगा कि आपका जीवन कितना प्रसन्नता से भरे जा रहा। एकता न टूटे भजन और भोजन, इसलिए बाबा जी यहां फरमा रहे, मंत्र राज नित जप गी तुम्हारा, मंत्र राज नित पूज ही तुम ही सहित परिवार, जो तर्पण करे, नित्य यज्ञ करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें, उसके हृदय में आप निवास करें। आपको माता पिता सब कुछ आपको माने, उसके हृदय में आप निवास करें। आगे, काम क्रोध मद मानन मोहा, लोभन छोभन रागन द्रोहा, जिन
के कपट दंभ नहीं माया, तिन के हृदय बसहु रघुराया, तिन के हृदय बसहु रघुराया, सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरी सब प्रशंसाकारी, दुख सुख सरी सब प्रशंसाकारी, काम क्रोध मद लोभ मोह कुछ न हो, जहाँ कपट न हो, दंभ न हो, पाखंड न हो, उसके हृदय में आप निवास करें, जो सबका प्रिय है, सबका हितकारी है, सुख हो दुख हो, प्रशंसा हो गाली हो, जो समान माने, सत्य बोले लेकिन प्रिय बोले, और सोते जागते जिसको आपकी शरणागति है, आपके सिवा जिसको कोई गति नहीं, उसके हृदय में आप निवास करो। पर नारी को जो जनेता समझे, पर धन को जो विष से भी बढ़िया विष समझे, उसके हृदय में आप निवास करें। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तीन के मन माही, आपके सिवा जिसको कोई गति नहीं, आप जिसको अत्यंत प्रिय हैं, उसके हृदय में आप निवास करें। संसार में जो कुछ बुरा दिखाई दे रहा है मेरे स्वभाव का कारण है, मेरे परमात्मा ने तो सब अच्छा ही बनाया है, लेकिन मुझे जो अच्छा नहीं लगता वो मेरे स्वभाव का दोष है, और संसार में जितना अच्छा लग रहा है वो मेरे परमात्मा की कृति है, ऐसा जो समझकर समाधान कर ले, उसके हृदय में आप निवास करें। संत गुरु महापुरुषों को आदर दे, उसके हृदय में आप निवास करें। संक्षेप में मुनिवर ने भवन दिखाए, अंत में कह दिया इतना दिव्य जीवन जीने के बाद भी जिसको आपसे कुछ चाह नहीं, कुछ मांग नहीं, कुछ अपेक्षा नहीं, जाहिन चाहि कबहु कछु, तुम सन सहज सने, केवल आपका स्नेह प्राप्त हो और कोई चीज की अपेक्षा न करे, उसके हृदय में आप निवास करें। चंद स्थान बताएं, और बाद में वाल्मीकि जी ने कहा आप गिरिराज चित्रकूट जाइए।
विठल विठल विठला जय 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 विठल विठल विठला जय जय सब गाइए। माझा विठल पांडुरंगा, ओ माझा विठल 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 विठला जय जय विठल विठल विठला माझा विठल विठल जय जय विठल विठल विठला जय जय विठल।